खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। तो आए हम अपने आप को खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुनने के लिए तैयार करें। जो चंद लम्हों की खामोशी में खुदा के जुड़ झुकेंगे और अपनी रूहानी गुज़ा के लिए उसे पुकारेंगे, क्योंकि वो खुदावंद खुदा आसमान और ज़मीन का मालिक ना कि हमें जिस्मानी चीज़ों से बल्कि आसमानी खुराक से भी सेर करता है। तो आए हम सब उसके हुजूर झुके और उससे हिकमत और बनाई मांगे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, इसराइल के रहनुमा और मसीह यस्सु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज की सुबह के लिए। तेरा कलाम हम सब के लिए खुदा उन खुदा रहनुमा बने और तेरा पाक रूह हम सब की मदद करे, ताकि हम तेरे बेटे की पहचान और खुदाऊं खुदा उसके इल्म और उसकी ज़िंदगी से सबकत लेकर खुदाऊं खुदा इस ज़मीन पर तेरी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। आई हुई तमाम माओं के लिए, बहनों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ और मेरे लबों का रखवाला बन, ताकि आज जो कुछ भी तेरा पाक रूह हम सब की तरबियत और नसीहत के लिए कहे, सबके लिए बरकत का बायस ठहरे। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। नए अहदनामा में से जैसे आप सबको याद है कि हम आयत बा आयत इफिसियों के नाम पालूस रसूल का खत उसके चौथे बाब की 11वीं आयत से 13वीं आयत तक सीख रहे हैं, और इस हिस्सा में से आज हम फिर पढ़ेंगे और लफ्ज कामल पर गौर करेंगे। तो खुदावंद का बंदा पालूस रसूल इफिसियों 4 बाब उसकी 11वीं आयत में यूं कहता है, और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को चरवाहा और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाएं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब की तरबियत और नसीहत हो, आमीन। हमने पिछले दिनों में देखा था और सीखा इस पर बड़े गहरे तौर पर लफ्ज बा लफ्ज के रसूल, नबी, मुबशर, चरवाहा और उस्ताद, इन सब को खुदा ने गाहे बगाहे तारीख हमें सिखाती है। इन सब को खिदमात देने का मकसद यही था कि खुदा की जिंदा आवाज गुमराह, सरकश और उन लोगों तक पहुंचे जिन तक खुदावंद का कलाम या उसकी आवाज नहीं पहुंची थी। जैसे हम देखते हैं, हमने पिछले दिनों में देखा था कि रसूल की रसालत यही थी कि वो अपने भेजने वाले के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाए, जिनमें हम देखते हैं कि पाको हिंद बड़े सगीर में जो शगिर्द आया और जिसने इस तमाम इलाका में मनादी की, वो कौन था? तोमा रसूल। हम तोमा रसूल के वसीला में जिसने एशिया में, जिसने यूरोप में, जिसने क्या कहते हैं कि इंडिया में, इन तमाम इलाकों में आकर क्या की? खुदावंद यीशु मसीह की मनादी की और उसने रसालत यानी कि रसूल की खिदमत को अंजाम दिया। हमने नबियों को देखा था कि आदम से लेकर मलाकी नबी के सहीफा तक जितने भी नबियों का जिक्र मिलता है, उन सब का पैगाम यही था कि तौबा करें, बुत परस्ती से किनारा करके जिंदा आसमान के खुदा की तरफ मतवजा हों। और नबियों की जितनी भी नबूवतें थी वो सब इसी बात की तरफ इशारा थी कि खुदावंद यीशु मसीह एक दिन, जिसके बारे में शुरू ही में कह दिया गया था कि वो औरत की नजर से पैदा होगा, जिसके बारे में कह दिया था कि वो ऐसा कामल बर्रा होगा जो दुनिया के तमाम गुनाहों को اپنے اوپر لے لے گا اور اس کے مار کھانے سے تمام نسل انسانیت شفا پائے گی، نجات پائے گی، بحال ہوگی اور خدا کے نزدیک جانے کا ان کو حق ملے گا۔ تو یہ نبیوں کا پیغام تھا جس میں یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر اس کے دکھ اٹھانے تک تمام نبوتوں کو ہم دیکھتے ہیں، اور ہم نے سیکھا تھا کہ نبی کا یہ کام تھا کہ خدا کی زندہ آواز لوگوں تک پہنچائے۔ مبشر کا کام جو آج کے دور میں خدمت بھرپور طریقے سے ہمیں نظر آتی ہے، جیسے ابتدائی کلیسیا میں فلپس کی خدمت کیا تھی؟ مبشر تھا، وہ اس نے مبشرانہ خدمت یعنی کہ منادی کی ان علاقوں میں جا کر اور مسیح کا پرچار کیا، جسے کہہ سکتے ہیں کہ منادی کرنے والا۔ تو مبشر کی خدمت کو ہم نے دیکھا تھا، اور بعض کو خدا نے کیا بخشا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدمت، یہ ذمہ داری، یہ بوجھ بخشا کہ وہ چرواہے کی خدمت کریں۔ چرواہے کا سادہ سا مطلب ہے یعنی کہ پادری، رہنما، قیادت کرنے والا، خداوند کے کلام کو خدا کے لوگوں تک پہنچانے والا۔ تو ان تمام کو، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا استاد کو کہ استاد کی خدمت کیا ہے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فقی اور فریسی ہوتے تھے، فریسی دیکھتے ہیں کہ وہ مذہبی رہنما تھے، لیکن جو فقیہ تھے، فقیہ یہ شرع کے عالم ہوتے تھے جو بہت زیادہ علم رکھتے تھے اور علم کے نقطوں کو، علم کی باتوں کو اور شریعت کی باتوں کو اور بہت سی دوسری علم کی باتوں کو کیا کرتے تھے، وضاحت کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ ویسے ہی آج کے دور میں خدا نے، جیسے کہہ سکتے ہیں کہ بائبل سکھانے والے علماء، خدا کا کلام سمجھانے والے جو نقطہ با نقطہ نبوتوں کے بارے میں اور دوسری باتوں کے گہرے بھید کے بارے میں سکھاتے ہیں خدا کے کلام میں سے۔ سو ان سب کو دینے کا جو مقصد ہمیں نظر آتا ہے وہ 12ویں آیت میں، تاکہ، یہ وہ لفظ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاکہ دا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، اس کے پیچھے جو وجہ، جو مقصد کیا ہے، رسول، نبی، مبشر، چرواہا جسے پادری کہتے ہیں یا استاد، دینے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ مقدس لوگ کامل بنے۔ مقدس لوگ کن کو کہا گیا ہے؟ ہم نے سب دیکھا، ہم نے دیکھا تھا بائبل مقدس میں سے کہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں ان کی روحانی حالت کیا بن جاتی ہے، وہ مقدسین ہیں، ان کو مقدس لوگ کہا گیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلے دنوں میں بتایا تھا کہ جب پالوس رسول نے یہ خط لکھا تو اس نے کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کون سے الفاظ استعمال کیے؟ جب ہم افسیوں پہلا باب اس کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو پالوس رسول اس ابتدا میں واضح طور پر بیان کر دیتا ہے کہ وہ کن کو خط لکھ رہا ہے۔ پالوس رسول یہاں پر یوں کہتا ہے افسیوں پہلا باب اس کی پہلی آیت میں، پالوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے، پالوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مقرر ہوا، مسیح یسوع کا رسول ہے۔ رسول یعنی کہ اسے ایک اعلیٰ خدمت ملی کہ وہ مسیح کی کیا کرے، رسالت کرے، اس کے بارے میں پیغام دے۔ رسول کا مطلب ہے پیغام دینے والا یا پیغمبر، پیغمبر یا پیغمبر جو پیغام دیتا ہے۔ پالوس کہتا ہے مسیح کا رسول ہے ان مقدسوں کے نام جو افسس میں ہیں، جسے سادہ طور پر کہہ سکتے ہیں ان تمام مقدس لوگوں کے نام جو افسس شہر میں رہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میں آپ کو خط لکھوں گا تو میں یوں لکھوں گا کہ فیصل، پاسٹر فیصل کی طرف سے آرولا کے تمام ان مقدسین کے نام جو نیو کرسچن کلونی میں رہتے ہیں۔ تو پالوس رسول یہاں پر جب لفظ مقدس کا استعمال کرتا ہے تو وہ مسیح کے بدن، خدا کے لوگوں کو کیا کرتا ہے، اپنی گفتگو میں متوجہ، ان کا مقصد بیان کرتا ہے کہ خدا نے ان تمام خدمات کو کس لیے دیا ہے، تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں۔ تو مقدس لوگ کون ہیں؟ آپ سب۔ آپ سب کیوں مقدسین ہیں؟ ना तो आपने कोई ऐसी अच्छी नेकी की है, ना तो हम क्या मुकद्दस पैदा हुए हैं, और ना ही इंसान कभी मुकद्दस पैदा होता है, क्योंकि खुदा का बंदा पालूस रसूल वाजह तौर पर कह देता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। दाऊद नबी जिसके बारे में कहता है कि मैंने गुनाह में क्या हासिल की, पदेश हासिल की। और फिर अय्यूब नबी भी इसके बारे में कहता है कि जो कोई औरत से पैदा हुआ है वो दुख देखता है, आरजी है, और खुदा के अब्दी जलाल से और पाकीजगी से महरूम है। सो पालूस रसूल यहां पर जब लफ्ज इस्तेमाल करता है ताकि मुकद्दस लोग, तो वो कलीसिया की तरफ इशारा करता है जिसमें हमने कोई अच्छा काम नहीं किया, हम में कोई नेकी नहीं पाई जाती, हम में से कोई भी समझदार नहीं था। क्योंकि पालूस रसूल यहाँ पर जब ये बात कहता है मुकद्दसीन या मुकद्दस लोग, तो वो उन लोगों की तरफ खास तरह इशारा करता है जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं, अपना मनजी, मुर्दों में से जी उठा हुआ अपना नजात दहिंदा मानते हैं। सो कलीसिया जिसे कह सकते हैं, मुकद्दस लोग, कलीसिया, मसीह का बदन, खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन, खुदा के लोग, खुदा के चुने हुए, खुदा की चुनी हुई मलकियत या खुदा की पाक कौम, इन तमाम अल्फाजों को जब हम देखते हैं तो इन सब को इस्तेमाल करने का खुदा का मकसद यही है कि गुनाहगार इंसान जब यीशु पर ईमान लाता है तो वो खुदा के खानदान का हिस्सा बन जाता है। सो हमारी रूहानी हालत क्या है? हम मुकद्दसीन हैं, आसमानी लोग, आसमान के रहने वाले हवैशी, जिसे कह सकते हैं शहरियात हमारी सही कौन सी है? आसमानी। सो पालूस रसूल कहता है सब का मकसद क्या है? ताकि मुकद्दस लोग कामल बने। सो कामल का लफ्ज इस्तेमाल जब यहाँ पर किया गया है तो कामल बनने से मुराद है अपने चाल चलन में, अपनी गुफ्तगू में, अपनी जिंदगी के गुजर बसर में, क्या हो हम बालग हो, मच्योर हो, जिसे कह सकते हैं कि बचकाना बातों को छोड़कर बगूलत की तरफ, बगूलत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है यानी कि मुकम्मल होना, कामल होना, समझदार होना, तजर्बाकार होना। सो हम रूहानी तौर पर खुदा की नजर में क्या हैं? बेऐब, पाक, मुकद्दसीन। लेकिन खुदा चाहता है, पालूस रसूल यहां पर सिखाना चाहता है कि हर रोज हम इस कामलियत में जिंदगी गुजारें। मिसाल के तौर पर मेरे साथ एक हवाला देखें। लफ्ज कामल का जो इस्तेमाल किया गया है इसी बात में किया गया है कि अपने उठने बैठने, बोल चाल और रोजमर्रा की जिंदगी में हम मुकम्मल तौर पर तजर्बाना जिंदगी, जिसे कह सकते हैं कि पुख्ता लोगों की तरह जिंदगी गुजारें, ताकि किसी को कोई मौका ना मिले कि वो मसीहत पर या मसीह पर या हमारी जिंदगी से ठोकर या क्या कह सकें कि गुमराही की तरफ ना जाए बल्कि रूहानियत की तरफ आए। सो मत्ती की इंजील उसका 5वां बाप उसकी 48वीं आयत में लफ्ज कामल का इस्तेमाल किया गया है। यहां पर खुदावन का बंदा मत्ती रसूल यसु मसीह की बातों को लिखते हुए कहता है, यसु मसीह ने कहा, पस चाहिए कि तुम कामल हो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामल है। खुदा कामल है, हम रूहानी तौर पर कामलियत की हालत रखते हैं, लेकिन अमली तौर पर हमें क्या करने की जरूरत है? पुख्ता रूहानी और या कह सकते हैं कि मुकम्मल कामल लोगों की तरह जिंदगी गुजारने की जरूरत है, जिसमें क्या कहा गया है पीछे देखते हैं कि अगर मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखें तो हमें कोई पुख्ता या रूहानी या कामल बंदा नहीं कहेगा, लेकिन अगर हम अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखें तो हम क्या 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 कर सकते हैं कि कुछ ज्यादा नहीं करते, लेकिन हमारी रूहानियत, हमारी पुख्तगी या हमारी रूहानी समझ या मसीही जिंदगी तब नूर की मानद चमकेगी जब हम अपने दर्द देने वालों, दुख देने वालों, सताने वालों को क्या करेंगे? मोहब्बत करेंगे। मिसाल के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने जहां पर पीछे कहा कि अगर तुम महसूल लेने वाला महसूल लेने वाले से मोहब्बत रखे तो उसका कोई फायदा नहीं। उस दौर में महसूल लेने वालों को बुरा समझा जाता था, जो यहूदी होते थे वो महसूल लेने वालों को अच्छा नहीं समझते थे। इसलिए हमें अपने चाल चलन बोलने उठने में क्या बनने की जरूरत है, कामल होने की जरूरत है। और इसके बारे में खुदा का बंदा पत्रस भी ये बात कहता है कि कामल शख्स वो है जो बातों बातों में खता नहीं करता। गाल पत्रस नहीं, यकूब कहता है, यकूब उसका 3 बाप। यहां पर वो पादरी तहबान को मुतवज्जा करते हुए कहता है, तमाम पादरी साहबान को, कलीसिया को कहता है, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। कामल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। कामल का जो लफ्ज हम बहुत दफा इस्तेमाल करते हैं कि बेऐब, जिसका मतलब है कि बेऐब, बेगुनाह, जिसमें कोई भी कमजोरी नहीं पाई जाती। याद रखें कि हम जमीन पर रहते हुए कभी भी कामलियत हासिल नहीं कर सकते, लेकिन हम इस कामलियत को यीशु मसीह की जिंदगी में देख सकते हैं, ताकि हम उन बचकाना जिंदगी को, बचपाना सोच को छोड़कर नौजवान की, या कह सकते हैं कि जवानी की, जवानों की तरह सोचना शुरू करें। जब लफ्ज कामल का आप देखें तो हरगिज इसका मतलब ना लें कि इसका मतलब है कि हम गुनाह से पाक हो जाएंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, बातों बातों में खता नहीं करेंगे। खुदा के पाक रूह के वसीला से हम क्या कर सकते हैं, अपनी सोचों पर काबू पा सकते हैं, अपनी बुरी आदतों पर काबू पा सकते हैं, अपनी क्या कह सकते हैं कि दूसरी जो भी बुरी बातें हैं उन पर गालबा सकते हैं। और ये किस तरह होगा, जैसे जैसे हम रूहानी तौर पर मच्योर होते जाएंगे, यानी कि पुख्ता होते जाएंगे। और पुख्ता होने के लिए एक ही वाहद रास्ता है, और वो है खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में हर रोज जगा देना, यीशु मसीह को अवलियत देना। आप सबको याद होगा कि खुदा यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी में अपने शागिर्दों के सामने कहा था, फरीसियों को, फकीयों को देखते हुए, कि अच्छा आदमी अपने खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरी। तो इससे कहने का मतलब ये है, अगर हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में जगा देंगे तो खुदा का कलाम हमारे बोलने से, उठने बैठने से क्या करेगा, जाहिर होगा। और अगर हम दुनिया की बातों में चुगली, हसद, लड़ाई, झगड़ा और दुनियावी बातों में मसरूफ रहेंगे तो हमें क्या आएगा, दुनियावी बातें। इसलिए पालूस रसूल का यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि खुदा ने पादरी साहबान को इसलिए कलीसिया को दिया है ताकि कलीसिया पुख्ता हो, ताकि कलीसिया रूहानी तौर पर मसीही चाल चलन में इतनी मजबूत बने ताकि खिदमत गुजारी के काम के लिए तैयार हो जाए। अगले हिस्सा में हम इस पर गौर करेंगे कि वो खिदमत गुजारी का काम क्या है। खुदावन ने आपको पाक ठहराया है, मुकद्दसीन कहकर बुलाया है, इसलिए हमें मुकद्दसीन की तरह, पाक लोगों की तरह इस जमीन पर जिंदगी गुजारने की जरूरत है। आए हम खुदा के हुजूर झुकें और दुआ करें। खुदा बाप, हम इस लायक नहीं कि पाक ठहरे, लेकिन तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के लहू बहाने से, सलीब पर कुर्बान होने के वसीला से हम सबको कामल बेटे और बेटियों का लकब मिला है। तो खुदावंद इस कामलियत में, जैसे तू खुदाओं खुदा आसमानी है, हमें भी आसमानी खुदाओं खुदा जिंदगी जमीन पर गुजारने की कुव्वत और ताकत बख्श। सबके साथ हो, सब खानदानों को खुदाओं खुदा बरकत दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।